सड़क से लेकर संसद तक की सियासत वाला शो एक बार फिर से आप देख रहे हैं यूपी बिहार के दिल से। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा और मेरे साथ मौजूद है हमारे एसोसिएट एडिटर सोनू कनौजिया। आज हम बात बिहार की करने वाले हैं और बिहार के आरजेडी के जो इस वक्त करता धरता है, बात करेंगे तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने एक स्टेटमेंट दिया है और यह स्टेटमेंट लोकसभा चुनाव 2019 में है उससे संबंधित स्टेटमेंट है। उनका कहना है कि अकेले राहुल गांधी ही पीएम पद के दावेदार नहीं हो सकते। उन्होंने कुछ नाम गिनाए हैं और क्यों उन्होंने यह नाम गिनाए और उन्होंने किन किन को पीएम पद का दावेदार कहा है, हमारे साथ सोनू कनौजिया जी जुड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे और इन्हीं से जानेंगे। सोनू जी, किन किन लोगों के उन्होंने नाम गिनाए हैं?
देखिए, ये तो सही है कि राहुल गांधी अकेले ही उम्मीदवार नहीं है प्रधानमंत्री पद के, अगर विपक्ष की बात करें तो, क्योंकि कई ऐसे चेहरे हैं जो आज भी बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, कोई एक्सपीरियंस है और अच्छी खासी सेंसिबल पॉलिटिक्स वो करते हैं। तो अगर तेजस्वी यादव ने ये कहा है तो ये इन सब चीज़ों को देख कर ही कहा है। तेजस्वी यादव की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ममता बनर्जी का नाम लिया, उन्होंने शरद पवार का नाम लिया, उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लिया, तो ऐसे कुछ नाम उन्होंने लिए हैं। तो ये सभी लोगों के पास,
मायावती का भी नाम लिया,
या इन सबके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपनी राज्य चलाया है। तो अगर विपक्ष बनता है तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, इस पर सहमति पूरे विपक्ष की नहीं होगी। और यही स्थिति है कि कांग्रेस राहुल गांधी को आगे करना चाहती है और विपक्ष नहीं चाहता कि वो राहुल गांधी के साथ काम करे, यानी कि राहुल गांधी के अंडर काम करे। विपक्ष चाहता है कि आज जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से विपक्ष में जो रीजनल पार्टीज हैं उनका दबदबा कांग्रेस से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो वो चाहेंगे कि उनके पार्टी का प्रधानमंत्री का फेस बने। तो यही कारण है कि तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है और मुझे लगता है कि यह बयान काफी मैच्योर लगता है, क्योंकि राहुल गांधी से अच्छे भी बहुत सारे ऑप्शंस इस वक्त विपक्ष के सामने हैं। तीनों विपक्ष कैसे आएगा एक साथ, ये देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विपक्ष इस वक्त बिखरा हुआ है। ममता बनर्जी अपना अलग ग्रुप बना रही है, जो आज मुख्यमंत्री है अलग अलग राज्यों के उनका ग्रुप बना रही है। कांग्रेस छोटी पार्टियों को आगे साथ में लेकर जाना चाहता है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी वो अपने कोएलिशन में कांग्रेस को नहीं लेना चाहते। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो ये कह रहा है कि आपके पास ऑप्शन है, आप अगर जब तक उन ऑप्शंस को आप प्रधानमंत्री पद का फेस नहीं बनाएंगे तो विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएगा।
लेकिन सोनू जी, इन सब में एक सवाल होता है कि चार लोग के उन्होंने नाम तो गिरा दिए
जी,
लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए अपने पिताजी का नाम उन्होंने नहीं किया, नहीं गिनवाया। लालू प्रसाद यादव देश की राजनीति का एक अहम चेहरा और जिसका खुद का ख्वाब रहा है कि वह प्रधानमंत्री बने, उनका नाम नहीं लिया उन्होंने।
देखिए, लालू प्रसाद यादव की अगर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि राहुल गांधी की अब लालू प्रसाद यादव की अब उम्र भी हो चुकी है और जिस तरह से वो जेल, उनके ऊपर अभी तो फिलहाल जमानत पर है, लेकिन जिस तरह से उनको सज़ा हुई है, अगर उन सज़ा के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि इस वक्त लालू प्रसाद यादव जेल में नहीं है, मतलब इस पूरे रेस में नहीं है। रेस में वही लोग हैं जो इस वक्त कोई पार्टी संभाल रहे हैं और कोई राज्य संभाल रहे हैं,
सक्रिय राजनीति में,
हाँ सक्रिय राजनीति में है और वो अब इस पूरी रेस में है। और मोदी को आपको हराना है तो सिर्फ अब लालू प्रसाद यादव नहीं चलेगा, अब चलेगा ममता बनर्जी, अब चलेंगे शरद पवार, अब चलेंगे अखिलेश यादव, अब चलेंगे मायावती। जब तक आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि जो मोदी की जो रथ यात्रा है, जो विजय रथ यात्रा जो इतने तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है, उसको रोक पाना असफल होगा। और राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी के अंदर अभी भी उस तरह का एक नेता सामने नहीं आया है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, तो मुझे लगता है एंटी इनकम्बेंसी और राहुल का एक मजा हुआ खिलाड़ी में कम होना, ये कांग्रेस के लिए मिश्रण ठीक नहीं है। और यही कारण है कि विपक्ष और भी ऑप्शंस ढूंढने के लिए तैयार है। और विपक्ष में अगर देखा जाए, अगर एकजुट होता है विपक्ष तो विपक्ष में बहुत ज्यादा चेहरे हैं। अगर मैं सबसे बेस्ट अगर मैं चॉइस की बात करूं तो शरद पवार हो हो सकते हैं, क्योंकि कई सालों से उन्होंने अच्छी खासी एक्टिव राजनीति की है। इसके अलावा वो बड़े बड़े मंत्रालय संभालने का उनके पास एक्सपीरियंस भी है। दूसरे नंबर पर आती है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी रेल मंत्री रह चुकी हैं, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अपना राज्य संभाल रही हैं। उसके बाद आता है मायावती, दलित फेस हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उनके पास भी एक्सपीरियंस है सरकार चलाने का। और चौथे नंबर पर आते हैं अखिलेश यादव, जिनके पास एक बार एक्सपीरियंस है अपना सर अपने गवर्नमेंट चलाने का, राज्य सरकार चलाने का, और सरकार भी उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से चलाई है। और जो गुंडागर्दी कहा जाता था कि गुंडों को पाल के रखा है मुलायम सिंह यादव ने, तो उनको भी उन्होंने साइडलाइन किया। तो अखिलेश यादव भी एक ऑप्शन है, लेकिन अगर इन चारों की रेस में अगर देखें तो शरद पवार इस वक्त नंबर वन पर दिखते हैं, लेकिन उनकी हेल्थ भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
क्या लगता है आपको, जब इतने दावेदार सामने आ रहे हैं और राहुल गांधी और उनकी पार्टी की तरफ से खुद सोनिया गांधी लोगों से मिल रही हैं, हमने देखा कि कुछ दिनों पहले जो तस्वीर निकल कर सामने आई जिसमें सोनिया गांधी ने डिनर के तौर पर सभी विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया था, क्या लगता है आपको, क्या चुनाव आते आते तक राहुल के नाम पर सहमति बन पाएगी, लगता है आपको?
मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो कांग्रेस से बड़ी वो रीजनल पार्टीज हैं, और कोई भी रीजनल पार्टीज ये नहीं चाहेंगी कि वो कांग्रेस के नेतृत्व में लड़े। जिसने भी कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा है उसको देखना पड़ा है कि उसके साथ क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ लड़ा, क्या हुआ, उनके साथ हार मिली। कर्नाटक में क्या हुआ, सरकार चली गई। उसके बाद अगर देखा जाए तो गुजरात में भी अगर हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवाणी इनका अगर साथ नहीं होता तो कांग्रेस अच्छा नहीं कर पाती। तो ये एक जो लीडर्स हैं उनके अंदर जहन में ये है कि जो भी कांग्रेस के साथ गया है वो डूबा हुआ है। तो यही कारण है कि कांग्रेस को बड़े रोल में कोई नहीं चाहता, कांग्रेस को दूसरे नंबर पर ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं बैठाना चाहता, ड्राइविंग सीट पर कोई और बैठना चाहता है जो विपक्ष को पूरी तरह से आगे लेकर जाए। और इसमें सबसे बड़ा रोल इन चार जो मुख्य नेता हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं उनका जो है, उनका जो तरीका है वो आगे आता हुआ दिख रहा है। ममता बनर्जी एक अपना ग्रुप बना रही है ताकि ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट किया जाए प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के तौर पर। शरद पवार भी कहीं ना कहीं एक ग्रुप बना रहे हैं ताकि वो विपक्ष को संभाल सके। उसके बाद मायावती और अखिलेश यादव, ये दोनों गठबंधन कर रहे हैं, और अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि मायावती के साथ अगर गठबंधन करना है तो कुछ बलिदान भी वो दे देंगे। तो मुझे लगता है कि मोदी को हराने के लिए ये पूरी एक जो रणनीति बनाई जा रही है, अगर उस रणनीति में कांग्रेस लीड करती है तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो फेल हो जाए, और अगर कोई और दूसरा ऑप्शन आता है वो अगर लीड करता है तो हो सकता है कि कुछ फायदा विपक्ष को हो जाए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू कनौजिया जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले एक रेस लगी हुई है, रेस कांग्रेस के और बीजेपी के बीच में है। सोनिया गांधी राहुल गांधी को इस रेस में कार का स्टेयरिंग पकड़ाना चाहती है, लेकिन जो उनके साथी दल है कोई उनके साथ सवार फिलहाल होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आते आते तक ये रेस कौन जीतेगा, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी बिहार के दिल से। नमस्कार।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।